ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமிஜி ஸ்ரீ தத்ரூபானந்த்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ர மந்திர 2.
பீஜஸ்யாந்தரீவாங்குரோ ஜகதீதம் ப்ராங் நிர்விகல்பம் புனஃ மாயா கல்பித தேஷ கால கலனா வை சித்ர சித்ரி க்ருதம் மாயாவி வவிஜும் பயத் யபி மஹா யோகி வய ஸ்வேச்சயா தஸ்மை ஸ்ரீ குரு மூர்த்தயே நமஹி ஸம்
ஜகத் பிராக். ய ஜகத் பூர்வ மே பிராக் மத்தப் பிரதம் பூர்வே ய ஜகத் பிரதம் நிர்விகல்பம் பீஜஸ்ய. சபசே பேலே யே ஜகத் ஹே யே விகல்பஹீன் தா, யானி கி த்வைத முக்த தா, பேத முக்த தா, அபேத தா. இதம் ஜகத் பிராக் நிர்விகல்பம், फिर दृष्टांत देते हैं, बीजस्य अंतः अंकुरम, जैसे बीज में अंकुर होता है, मगर अंकुर बीज से अलग नहीं होता है, अभेद होता है, बीज के साथ अखंड रहता है. इदम् जगत् प्राक् निर्विकल्पम् बीजस्य अंतः अंकुरम् इव, ऐसे ही पुनः மாயா கல்பித தேஷ கால கல்லனா வைச்சித்திர சித்திரீகிருதம். பஸ் உசி டங் சே தத் பஷாத், பலே தோ ஜகத் பீஜ் மே, ஜெசே விரக்ஷ பீஜ் மே ஹோதா ஹை, ஐசே ப்ரஹ்மரூபி பீஜ் மே ஜகத் தா, மகர் அலக் நஹி தா, ஏக தா, विकल्प रहित था. बाद में तत्पश्चात माया कल्पित देश काल करना, माया के द्वारा देश और काल की कल्पना की गई. विद द हेल्प ऑफ माया इट वॉज इमेजिन व्हाट टाइम एंड स्पेस. देश और काल, टाइम एंड स्पेस, ये तो बाद की बात है. पहले तो ब्रह्म था इसलिए वो प्रथम है. और पहले दिन में समझाया जो मैंने आपको बताया था, सेकंड इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. एक साल, फिर एक महीना, फिर एक वीक है, है? उसके बाद एक दिन है, 24 घंटे हैं, फिर एक घंटा, फिर एक मिनट, फिर एक सेकंड. अगर सेकंड सबसे छोटा यूनिट है तो उसको फर्स्ट क्यों नहीं कहते? नहीं कहते. सेकंड मतलब सेकंड, सेंटी सेकंड, सेकंड का सौवां भाग, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, मतलब वो सेकंड है. अब समझ में आएगा उसका नाम सेकंड क्यों है. पहले तो ब्रह्म था, सत ब्रह्म रूपी बीज था, और वो बीज में जगत था, मगर वो तो एक था, बाद में तत्पश्चात माया के द्वारा देश और काल की कल्पना की गई। देखिए ये टाइम है ना, समय 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 सुबह आते हैं क्यों, अरे काम नहीं, चलो ना थोड़ा समय काट के ब्रह्मपुरी में जाते हैं समय काटने के लिए। लेट अस किल टाइम, रिमेंबर माय डियर सर, टाइम इज गोइंग टू किल यू, यू कांट किल टाइम। फिर भी ये समय की बात ऐसी है, टाइम इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। समय क्या है, मन की विभावना है। समय नाम की कोई चीज सत्य तो है ही नहीं, सचमुच तो समय है ही नहीं। दो अनुभवों के बीच का जो खाली गैप है ना, उसका नाम है टाइम। देखो रात को सो गया, सुबह उठ गया, बीच में क्या बना, नींद की कुछ पता नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग, मगर जो गैप रहा ना वो गैप को क्या कहेंगे, तो कह दिया टाइम। दो अनुभव के बीच में कोई अनुभव नहीं है, सुषुप्ति में, सुषुप्ति में आप क्या कहते हैं, कुछ देखा था नहीं, आंख काम नहीं करती, कुछ सुना था नहीं, कान काम नहीं करते, ऑल फाइव सेंसेस ऑफ परसेप्शन आर एट रेस्ट। आंख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, नाक ने सूंघा नहीं, जीवा ने कोई स्वाद नहीं लिया, कोई इंद्रिया काम नहीं करती थी, बुद्धि ने कोई निर्णय नहीं लिया। अच्छा सपना, सपना नहीं था मैंने कहा, इसका मतलब माइंड भी काम नहीं करता था। अच्छा तो एक अनुभव हो गया कि मैं सो गया, दूसरा अनुभव हो गया मैं उठा, जागृति में आया, तो दो के बीच में क्या था, जो कुछ नहीं था उसका नाम है टाइम। इट इज कंटिन्यूअस अनब्रोकन फ्लो ऑफ टाइम। ये जो विचारधारा है ना हमारी, विचार में भी ऐसे, एक विचार दूसरा विचार और दो विचार के बीच में जो जगह है ना, उसका नाम है टाइम। मगर वो कल्पना है, किसकी, माया की। तो यहां पर कहा यह जगत प्रथम विकल्पहीन द्वैत मुक्त बीज में अंकुर के जैसा था, अखंड था, अभेद था, तत्पश्चात माया कल्पित देश काल करना, और ऐसे विचित्र रूप से एक देश और काल की कल्पना का चित्र बनाया गया। किसके द्वारा, माया के द्वारा। तो यहां पर आया माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। मर कैसे, यह महायोगी इव मायावी इव, या तो महायोगी कोई है जैसे कि मैजिशियन है, कल्पना करता है, होता कुछ नहीं है, अपनी कैप यूं निकालेगा और अंदर से वो कबूतर निकल के बाहर आते हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, बस यूं करता है और रूमाल निकल जाते हैं, कल्पना से, वो तो कल्पना करता है, महायोगी जादूगर मैजिशियन। द वन हु इज मैजिशियन, ही डज नॉट कम अंडर द स्पेल ऑफ मैजिक, व्हाई, ही इज मैजिशियन। तो जो जादूगर है ना, उसको जादू नहीं दिखाई देता है, जादू किसको दिखाई देता है, जो प्रेक्षक पैसा टिकट लेके आए उसको जादू दे, उसको तो पता है इट्स माय हैंड ट्रिक। ऐसे माया ईश्वर की शक्ति है, तो ईश्वर की शक्ति, जादू जादूगर की शक्ति है, तो ईश्वर है ना, वो माया के अंदर नहीं आता है, माया से मुक्त रहता है, और हम सब माया के अंदर फंसते जाते हैं। तो यहां पर कहा गया, बहुत अच्छी बात बताई, जैसे कोई महायोगी हो, मायावी हो, और मायावी या मायापति, मायापति का मतलब ही ईश्वर, माया का पति कौन है, ईश्वर, जिसकी वो शक्ति है। तो जैसे महायोगी इव मायावी इव अपि स्वेच्छया विजृंभयति, जैसे कोई मायावी है, महायोगी है, या मायापति ईश्वर है, वो अपनी इच्छा से सब कुछ उत्पन्न करता है, मगर खुद उत्पन्न कैसे करता है, अपने आप नहीं, माया की मदद से, माया के द्वारा करवाता है। तो ऐसा जो उत्पत्ति स्थिति और लय करवाता है, जिसकी मदद से ये होता है, ऐसे गुरुमूर्ति श्री दक्षिणामूर्ति को ये नमन है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। ये भाषांतर के बाद हम अभी जाते आगे। बीजस्य अंतः अंकुरम इव, बीज में जैसे अंकुर होता है, या वृक्ष ले लो बात एक ही है, बीज में अंकुर होता है मगर दिखता नहीं है। ये टेबल लकड़े का है मेरे ख्याल से, और ये स्टेप है ये भी लकड़े के हैं, और स्टेज ये भी लकड़े का है, ये भी लकड़े का है, ये जो हैंडल है यहां पर ये भी लकड़े का है। लकड़े का तो है, लकड़े के भीतर अग्नि तो है मगर दिखता नहीं है। इट इज इन अनमैनिफेस्टेड कंडीशन, अव्यक्त रूप में है। ये टेबल को उठा के आग में डाल दो तो एकदम जलने लगेगा, और लोहे का होगा तो नहीं जलेगा। क्यों? लोहे के भीतर अग्नि नहीं है। समझ में आती बात? मां के पेट में बच्चा है, दिखता नहीं है। समझ में बात आती है? तिल में या मूंगफली में तेल तो है मगर ऐसे बाहर दिखता नहीं है। क्यों? अव्यक्त रूप में। ऐसे बीज में वृक्ष तो है मगर दिखता नहीं है। नरसिंह ने गाया है ना, बीज मां वृक्ष तू, वृक्ष मां बीज तू। बात यहां पर मैं समझाने की यह है, कहते हैं बीजस्य अंतः अंकुरमिव। जगत कैसा है? बीज में जैसे अंकुर अव्यक्त होता है, निर्विकल्पम अभेद होता है, निहित छिपा हुआ होता है, दिखता नहीं, ऐसे ही सत ब्रह्म रूपी बीज में, सत ब्रह्म है, ऐसे बीज में विश्व का विस्तार है मगर अभी दिखता नहीं है। क्योंकि दृश्य प्रपंच जिसको हम जगत कहते हैं वो अंदर होते हुए भी अव्यक्त है, इट इज इन अनमैनिफेस्टेड कंडीशन, इसलिए वो दिखता नहीं है। बीज के अंदर पेड़ के पत्ते हैं वो नहीं होंगे? होंगे ना, होते तो बाहर कैसे आते भाई? यार गर्भ होता है ना मां का, पहले तो गर्भ होता है शुरू शुरू में, उसमें हाथ पैर आंख मुंह कुछ नहीं दिखता है, बस धीरे धीरे विकसित होता है। ऐसे ही वो बीज के अंदर पत्ते हैं, डाली हैं, फल हैं, फूल हैं, मूल हैं, सब कुछ है, मगर बीज को उठाने से वो सब कुछ अंदर दिखता नहीं है। ऐसे ब्रह्म के भीतर भूचर खेचर जलचर प्राणी मात्र अंदर हैं। 14 ऊर्ध्वलोक, 7 ऊर्ध्वलोक, 7 अधलोक, 14 लोक भी अंदर हैं, जिसका जिक्र हमने पहले दिन किया था। बस इतना होते हुए भी नहीं दिखता है। क्यों? आपने ये वटवृक्ष देखा है ना, बनियन ट्री, उसका बीज देखा है? वो टेटा बोलते हैं, मगर उसके अंदर में एक छोटा राई के दाने जैसा होता है मूल बीज। अब देखो उसके अंदर इतना बड़ा बड़ा वटवृक्ष है। भारत में 2 है, एक भरूच के पास कबीर वट है, एक कलकत्ता में है बॉटनिकल गार्डन में, वो वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट ट्री है जो कलकत्ता में हो, और सबसे बड़ा है साउथ अफ्रीका में, उसका नाम है वंडर पू, और वो मैंने देखा है 1100 साल पुराना। कितना? 1100 साल पुराना। मुझे याद है वो दिन केपटाउन में जब साउथ अफ्रीका में गया वो वृक्ष देखने के लिए, तो मैं तो देखकर मेरे को तो 15वां अध्याय याद आ गया, तो मैंने तो शुरू कर दिया वृक्ष के सामने खड़े होके ऊर्ध्वमूल अधर शाकम, मगर फिर मैं तो रुका नहीं था, आंखें बंद थी मेरी, और पूरा अध्याय चला, और 15वां अध्याय जब खत्म होने आया तब मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द तो 200 आदमी खड़े थे, कोई कैमरा कोई ट्राईपोड लेके क्या क्या फिर मैंने आंख खोली तो पूछते कि तू क्या कर रहे थे, ये तो पेड़ है इसको हाथ जोड़ के क्या करते हो? सब टूरिस्ट थे। मैंने कुछ समझाया मैं क्या करता था, फिर मैंने बोला चलो सब लोग मेरे साथ हाथ मिलो, सब लोग हाथ मिलाए, सब मिल गए ने, कम से कम 20 आदमी, तो भी उसका घेरावा इतना बड़ा था पेड़ का, हम लोग उसको गले लग नहीं पाए, सब मिलके भी 20 आदमी। 1100 साल उसकी उम्र है। मैं कहना क्या चाहता हूं, इतना बड़ा वटवृक्ष एक छोटी सी बीज में होता है। देखो ना होता तो बाहर कैसे आता, ठीक है ना, पर बाहर आता है। अगर इतनी बात समझ में आ जाएगी तो सत ब्रह्म है, वो बीज है और उसके अंदर 14 लोक हैं और पूरा विश्व है, ये अंदर निहित होता है। निहित मतलब छिपा हुआ होता है, पर आंख से दिखता नहीं है क्योंकि अव्यक्त है। इसलिए ये वायर आंख से दिखता है, मगर इसके अंदर है क्या बिजली शक्ति, मगर वो दिखती नहीं है क्योंकि अव्यक्त है। इसलिए है तो सही पर दिखेगी नहीं, मगर जो नहीं दिखती ना वो बड़े बड़े कारखाने चलाती है। अरे नहीं दिखती है वो 1000 का गोला उसको भी प्रकाश में लाती है, नहीं दिखती है वो क्या क्या काम करती है, बड़ी से बड़ी 30-30 डब्बे की ट्रेन को खींच के ले जाती है, इसके अंदर छुपी हुई है वो। अच्छा इतनी ताकत, हाँ अदृश्य में जो ताकत है वो दृश्य में नहीं होती। तो देखिए साहब, ईव शब्द का यहां पर के बीजस्य अंतः अंकुरम इव, जैसे बीज में अंकुर मतलब वृक्ष पूरा भरा पड़ा है मगर अव्यक्त रूप में है, निर्विकल्प है, अभेद था, छिपा हुआ था। बृहदारण्यक उपनिषद ने ये बात को भी कहा है, सदैव सौम्य इदमग्र आसी, हे सौम्य सत एव, पहले तो सब कुछ सत स्वरूप ही था, इदम अग्र आसीत पहले था। ये माया की उत्पत्ति के बाद सब असत होने लगा और उत्पन्न होगा वो असत ही होगा, जो जन्मेगा वो मरेगा, उत्पन्न होगा उसका नाश होगा, या द्रष्टम तन्नष्टम, स्वभाव है ऐसा, नियम है ऐसा कुदरत का। तो देख लीजिए बहुत अच्छी बात बताई गई, पहले सब कुछ सतरूपी था, सत एव सौम्य इदमग्र आसीत, और इसका दृष्टांत देते हैं। सुषुप्ति के भीतर जब हम सो जाते हैं तो क्या जगत नहीं होता हमारे आजूबाजू, जगत तो होता है, अब समझना मुख्य बात आ गई, मगर वो जगत का हमें अनुभव नहीं होता है। मैं जब सुषुप्ति में होता हूं डीप स्लीप में तो सितारे चंद्र पूरा भूमंडल आकाश गंगा है वो क्या नष्ट हो जाती है, नहीं है तो सही, मगर हमें पता नहीं चलता है, क्यों हम सुषुप्ति में हैं। अब सोचना मैं हूं इसलिए जगत है, या जगत है इसलिए मैं हूं, हाँ अब समझे, मैं हूं इसलिए जगत है, जगत है इसलिए मैं नहीं हूं भाई। अगर मैं हूं इसलिए जगत है तो प्रथम मंत्र देखिए कि जगत मेरे भीतर है, मैं दिखता बाहर है, अब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है सोचने से। तो हम धीरे धीरे आगे चलते हैं कि सुषुप्ति में सब कुछ होते हुए भी वो जगत अव्यक्त होता है, अदृश्य होता है, भीतर होते हुए भी दिखता नहीं है। तो सुषुप्ति एक बीज है जैसे दृष्टांत के तौर में समझना है, तो और वो सत्रूपी बीज है ने उसमें से ये पूरा जगत उत्पन्न हुआ है। अब आपके मन में कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं, ये स्वामी जी हाँ भाई ये ब्रह्म सत है, हाँ सत है, आत्मा सत है, सत है, तो जगत तो आप कहते हो असत है, हाँ सत है, तो ऐसा तो नहीं होता है, तो घोड़ा जन्म देता तो बकरी थोड़ी होती, और बकरी जन्म देती तो ऊंट थोड़ी पैदा होता है, जिसमें से जो जन्मेगा वो ऐसा ही होगा। अगर ब्रह्म सत है और उसमें से जगत का जन्म हुआ तो जगत कैसा होना चाहिए, सत होना जी मजा दी क्यों हमने सिखा दिया, तो आपने मेरे को प्रश्न करना ही पड़ेगा स्वामी जी। हां भाई अगर आत्मा सत है, बीज सत है, आत्मा चेतन है, ब्रह्म चेतन है, अगर उसमें से जगत का जन्म हुआ तो जगत भी चेतन होना चाहिए, जड़ नहीं हो सकता है। बात ठीक है भाई, और चेतन ब्रह्म से जड़ जगत कैसे उत्पन्न होगा। अच्छा अभी रुको जरा यार, थोड़ा धीरज रखो, अभी आपका उत्तर मिल जाएगा। अरे स्वामी जी, हमारा प्रश्न ये है कि जड़ में से जड़ की उत्पत्ति हो सकती है, और उत्पत्ति नहीं होती वहां तक कोई कारण नहीं बन सकता है। आप कहते हो कि ब्रह्म विश्व का कारण है और वो चेतन है, तो जड़ जगत कैसे पैदा होता है? स्वामी जी, आत्मा तो निराकार है, अभी निराकार है, तो निराकार से साकार की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा और ब्रह्म को हाथ पैर है? नहीं है। अवयव है? नहीं है। तो जन्म तक को तो अवयव होते हैं, निरअवयवी से अवयव वाला व्यक्ति कैसे पैदा होता है? ये आपके प्रश्न मैं पूछता हूं। शंका तो हर एक को होनी चाहिए, शंका होती है। फिर एक और आदमी आ गया, स्वामी जी वी आर ऑल एजुकेटेड वन। हां मैं स्वीकार करता हूं, इफ आत्मन और ब्रह्मन इज चेंजलेस एंड डीडी हाउ इट इज दैट। देखो वो प्रश्न पूछना चाहता है कि आत्मा और ब्रह्म चेंजलेस अपरिवर्तनशील सत्य है, हाउ इट कैन बी कॉज ऑफ द यूनिवर्स विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जिसमें सतत परिवर्तन होता है, ऐसी चीज जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे में कैसे पैदा हो सकती है? और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मतलब संसार, समसरति इति संसार, नित्य क्षण क्षण में परिवर्तन होता है, इसलिए संसार को क्या कहते हैं? क्षणभंगुर है। तो देखो सब आप जितने प्रश्न मेरे को कर रहे हैं नहीं, व्याजबी है, सब सच है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आत्मा इज एवरलास्टिंग रियालिटी, तो एवरलास्टिंग रियालिटी है, उसमें से रिलेटिव रियालिटी कैसे पैदा हो सकती है? जस्ट ऑपोजिट। तो ऐसे ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर हमें धीरे धीरे मिल जाएगा। तो उसने कहा, मंत्र में आया, मायावी इव स्वेच्छया इदम जगत विजृंभयती। देखो कैसे होता है, जैसे कोई मायावी जादूगर, उसको कुछ नहीं होता है, कुछ खाली होने से कुछ न कुछ पैदा कर देता है। ऐसे देखो, ये तो सबसे बड़ा मायावी है, माया जिसकी शक्ति ईश्वर की, वो तो अपनी माया के द्वारा कुछ भी पैदा कर सकता है, इसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। मायावी इव और अपनी इच्छा से स्वेच्छया इदम जगत भी जुर्म बहती, सत्स्वरूप चिदात्मा मायापति जो ईश्वर कहा जाता है, वह स्वयं की इच्छा के द्वारा कुछ भी पैदा कर सकता है। जैसे जादूगर अपनी इच्छा से वो जो इच्छा करता है वो हमारे सामने प्रकट करता है, बाह्य कोई साधन न होते हुए भी, जैसे यूं करता और उसके हाथ में रूमाल आता है तो बोले तार कहां से आया, फिर तार बुनने के लिए हथियार कहां से आए, कुछ नहीं, फिर कपड़ा कैसे, कुछ नहीं, उसने यूं किया रूमाल हमको, एक नहीं एक दो, और मुंह में से पट्टी निकाल निकाल करता है जादूगर, तो अपनी इच्छा से करता है। ऐसे ईश्वर भी अपनी इच्छा से ये सब कुछ करता है, ऐसा एक दृष्टांत दिया। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा ये मायावी यानी क्या। आज समझ लेना साहब, तो कभी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे समझी नहीं, मैं आपको इतने पर्याय दे दूंगा आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। क्यों पता है? स्वयं कंफ्यूज परान कंफ्यूजयति। इफ आई एम कंफ्यूज आई कैन कंफ्यूज यू, इफ आई एम विथ डर्ट एंड मड आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द थिंग बट डर्ट एंड मड, बट इफ आई एम क्लियर, इफ माई थॉट्स आर वेरी वेरी क्लियर आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द थिंग बट क्लैरिटी। समझ में आता है? तो देखिए मैं समझाता हूं आपको, कभी भी आप मुश्किल में नहीं पड़ोगे, समझ लो ये महायोगी मायावी क्या है। तो देखो, माया ईश्वर की शक्ति है, इसलिए सबसे बड़ा मायावी है, उसका नाम ईश्वर है। और है तो वो ब्रह्म, सच बात है, कोई भी नहीं, ये तो होता रहता है। सी देर इज संसार, क्षण भंगुर, क्षण में चेंज होना चाहिए। तो ईश्वर है, उसके पास माया शक्ति है, और ईश्वर लक्षार्थ में है कौन? वो खुद ईश्वर नहीं है, ईश्वर बना बैठा है। क्यों? माया की उपाधि के द्वारा उसने माया शक्ति को अपनाया, माया का मेकअप किया और वो ईश्वर बन गया या ब्रह्म बन गया। तो उसका एक नाम है माया विशिष्ट ब्रह्म, माया विशिष्ट। माया चली जाएगी तो ईश्वर नहीं रहेगा, फिर सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है वो रहेगा। तो मैं क्या समझा रहा हूं, यहां दो शब्द है, मायावी इव स्वेच्छया, ऐसी बात है मंत्र में। इसलिए ये मायावी कौन है? तो असल में तो ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, मगर उसने माया की उपाधि धारण की और ईश्वर बन गया, अपना नाम रख लिया उसने ईश्वर। ईश्वर का जन्म नहीं होता है। अरे स्वामी जी क्या बात करते हो, हाँ अच्छा देखो भाई, ये जितने पुरुष वर्ग में बैठे हैं ये कोई के न कोई के पति है कि नहीं? अरे है कि नहीं? हस्बैंड हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, अगर हस्बैंड हो, मैं आपको पूछता हूं कि आपकी जन्म तारीख क्या है, तो आप मेरे को बता देंगे? अच्छा आप हस्बैंड हो? हाँ अच्छा, हस्बैंड की जन्म तारीख बताओ। हस्बैंड की क्या जन्म तारीख होती? हस्बैंड जन्म लेता है तो अगर एक आपका भी जन्म होगा, एक हस्बैंड का भी जन्म होगा, तो आपका जन्म दो बार होता है, और हस्बैंड बनने के बाद अगर बाप बन गए तो बाप का भी जन्म हो गया, तो तीन दफा जन्म होता है। हस्बैंड का जन्म नहीं होता है, वो हस्बैंड कहलाता है। कब? हस्त मिलाप होने के बाद में। शादी की तैयारियां होती है तो लोग जाके, सेठ लोग जाके बोलते हैं कि गौर महाराज जल्दी करना हो, और टाइम नहीं है, वो फास्ट फास्ट थोड़े मंत्र जाने दो ना, वो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। और हस्त मिलाप का टाइम रहता है, उसलिए कपड़ा ढक देते ऊपर, तो जिस शादी जिसकी हो रही है वो महाराज दो चार मंत्र ज्यादा बोलो, हाथ पकड़ने की मजा आती। क्यों? इसलिए तो वो कपड़ा ढकता है कि वो अंदर हाथ पकड़ के वो दो दिन क्या करते पता नहीं, कोई को पता नहीं चलने वाला है। मैं आपको समझाता हूं कि ये पति का जन्म नहीं होता है, पर वो दिन से पति कहलाता है। और वो कहते हैं ना, ये पत्नी पत्नी नहीं होती है, पहले तो कुंवारी कन्या होती है, मगर हस्तमिलाप का समय तीन फेरे फिर के अग्नि की साक्षी में बाद में उसको समझाया जाता है, फ्रॉम टुडे यू आर वाइफ ऑफ समबड़ी, ठीक है ना? और वो मानने लगती कि मैं पत्नी हूं, पत्नी हूं, मानने लगती। समझ में आया? ऐसे ही माया की उपाधि लेने के बाद ब्रह्म को हम मानने लगते हैं कि ईश्वर है, उसके पास माया में शक्ति आ गई, इसलिए। तो यहां पर माया विशिष्ट ब्रह्म कहो तो बात ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कभी कभी आप शास्त्र पढ़ेंगे तो बात आएगी, स्वउपाधिक ब्रह्म, स्वउपाधि, उपाधि वाला ब्रह्म, कौन सी? माया की उपाधि वाला ब्रह्म, मतलब ईश्वर उसका नाम है। फिर जगत उत्पन्न करने की शक्ति है, ताकत है, सबल है, तो उसका नाम आएगा शास्त्र में सबल ब्रह्म। सबल ब्रह्म कहोगे एक ही बात, स्वउपाधिक ब्रह्म कहोगे एक ही बात, माया विशिष्ट ब्रह्म कहोगे वही बात। फिर कहेंगे जगत का कारण क्या? तो ईश्वर, ईश्वर कैसा है? मायावी है, तो उसका नाम क्या होगा? कारण ब्रह्म। तो कारण ब्रह्म कहोगे तो एक ही बात। और फिर बड़े मोटे दिग्गज ऋषि के हरिद्वार से स्वामी जी आ गए, वो टेक्निकल भाषा में बात करेंगे, क्या? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। हा, इतना बड़ा नाम दे दिया, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। तो बात तो वही, उसका नाम क्या है? ईश्वर। और सादा सीधी बात में कोई स्वामी जी आगे कहेंगे उसको माया उपहित चैतन्य कहते हैं तो भी बात होगी हुई समझ में आया। कितने पर्याय हो गए? छह। माया विशिष्ट चैतन्य सोपाधि ब्रह्म सबल ब्रह्म कारण ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण और माया उपहित चैतन्य। जो नाम समझना है समझ लो। एक बात उसने ईक्षण किया वो ईश्वर ने, संकल्प किया। संकल्प बहुत बड़ी ताकत होती है। संकल्प से ही आगे की भविष्य की रचनाएं होती है। हमारे गुजरात में गौदूत जी हो गए बहुत अच्छी बात करते हैं और एक दृष्टांत देते हैं। डिंगल ढिंगली कोड़े रमता अंते माता थाय है और छोटी गुड़िया गुड़ियों का खेल कर देखो बच्चे होते हैं ना उसमें लड़कियों का खेल अलग होता है और लड़कियों का खेल अलग होता है। दो चार पांच दस लड़के मिल जाएंगे चलो खेलते हैं। क्या खेलते हैं? तो चोर पुलिस। तो बड़े होकर क्या बनेगा? कोई चोर कोई पुलिस। और लड़कियां क्या कहती है? वो खाने के बर्तन लाएगी फिर गुड़िया को ले लेगी। क्यों? उसको अंत में क्या मां बनना है? समझ में आता है ना? तो ये संकल्प की बात मैं समझा रहा हूं। तो ईश्वर ने संकल्प कर दिया। तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये थी सतपो तप्त तप किया।